का मंगलाचरण करके और स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणिमीय जिनिंद वर्णे मिचंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस परुवणम गोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा करने की प्रतिज्ञा लेकर उस उद्देश्य को सार्थक किया आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, जिन्होंने गोमट सार जीव कांड के अंदर पूरे षटखंडागम के सार को भर दिया है और आप और हम सरलता से अपने संसारी अशुद्ध जीवात्मा की प्ररूपणाओं को जानकर और उसे शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। हम आ गए हैं संज्ञा प्रकरण पर, यानी पांचवे चैप्टर में हम लोग आ गए हैं और ये है संज्ञा। संज्ञा के बारे में आपको हमने बताया था कि संज्ञा नाम है वांछा का, जिसके निमित्त से जीव दोनों ही भावों में इस लोक में भी और आगे के परलोक में भी दुखों को प्राप्त करता रहता है। ऐसी वांछाएं होती हैं, ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनको प्राणी रोक नहीं पाता और उसके कारण दुखों को प्राप्त करता रहता है। तो वे संज्ञाएं चार बताई गई, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये चारों ही संज्ञाएं प्रत्येक प्राणी के अंदर होती हैं, एक इंद्री से लेकर के चार इंद्री पांच इंद्री तक के सब जीवों में व्यक्त अव्यक्त रूप से पाई जाती हैं। अब क्या है व्यक्त रूप में, आपको तमाम जीवों की आहार संज्ञा नहीं दिखती, लेकिन बिना आहार संज्ञा के कोई जीवित नहीं रह सकता। तो आहार संज्ञा के बारे में भी आपने जाना कि भोजन को देखने से और भोजन का स्मरण कर लेने से या पेट खाली हो जाने से अथवा असाता वेदनी यानी क्षुधा वेदनी कर्म के तीव्र उदय या उदीर्णा होने से आहार संज्ञा प्रकट होती है, माने आहार यानी भोजन करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अब हम आते हैं भय संज्ञा पर। आहार संज्ञा को तो आपने जान लिया कि हम सबके आहार संज्ञा है, कर्मों के आहार को भी हम ग्रहण कर रहे हैं और बाहर शरीर की क्षुधा की शांति के लिए भोजन को भी ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए आहार संज्ञा से युक्त हैं। अब हम भय संज्ञा पर आते हैं। भय संज्ञा चलिएगा पेज नंबर है 47 और गाथा नंबर 41।
आई भीम दंशणेणया
तस्व जोगेण ओम सतिये
तस्व जोगेण ओम सतिये भयकम उदीर्णाये
भय सन्ना जाय दे चदुहिम
भय सन्ना जाय दे चदुहिम।
सामूहिक गाथा पढ़िएगा। ऐ
भीम दंशणेणया तस्व जोगेण ओम सतिये भयकमुदीर्णाय भयसन्ना जायदे चदुहिम।
अति भीम दर्शनेन च तस्योपयोगेन अवमसत्वेन भयकर्मोदीर्णया भयसंज्ञा जायते चतुर्भिः। यानी चार कारणों से इस जीव के अंदर भय संज्ञा जागृत होती है। भय का मतलब डरना, और डरने में क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस लिए इस जीव को डर लगता है, तो अय भीम दंशनेन अत्यंत भयंकर पदार्थ को किसी को देख लिया, एकदम शेर को देख लिया, अजगर को देख लिया, बहुत बड़ा युद्ध देख लिया, बंदूकें चलती देख ली, मरेंगे तो बंदूक लगने के बाद, लेकिन उसके देखने मात्र से हार्ट फेल हो जाता है, मर जाते हैं, यानी डर जाते हैं। तो अत्यंत भयंकर पदार्थ के देख लेने से, और दूसरा कारण है जो पहले कोई अत्यंत भयंकर दुर्घटना आदि देखी है तो उनका स्मरण हुआया तो एकदम जीव सिहर जाता है, डर जाता है, रोम रोम उसका सिहर जाता है। नंबर तीन, शक्ति के क्षीण हो जाने पर, शक्ति के हीन होने पर भय संज्ञा एकदम उसके अंदर समा जाती है। और चौथा कारण है कि अंतरंग में भय कर्म का जब तीव्र उदय आ जाता है या उसकी उदीर्णा होती है तब भय समा जाता है, उसके कारण जीव को डर लगने लगता है। तो भय माने बताया ना कि डर, तो वह भय आगम में सात प्रकार का माना है, इसलोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय। अकस्मात कोई समाचार सुन लिया एकदम डर जाते हैं। कभी कभी आपने बच्चों को देखा होगा कि सोते सोते एकदम चौंक जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये भय संज्ञा है, कोई चीज याद आ जाती है या कोई बुरा स्वप्न देख लिया तो एकदम डर जाते हैं। कभी कभी इतना डर जाते हैं गिग्गी बन जाती है और एक करवट से दूसरी करवट तक लेने की हिम्मत नहीं रह जाती, इतना भय लग जाता है। तो मव्यात्माओं, इन संज्ञाओं को जिनमें रह करके हम अपने जीवन को जी रहे हैं, रात दिन चाहे आहार करके चाहे डर कर करके, और हमारे जीवन के अंदर तमाम सम विषम परिस्थितियां आती हैं और उसके द्वारा अपने जीवन को जी रहे हैं, उसी को ही आचार्य देव बताते हैं। बस हम बिना पढ़े उन चीजों को जान नहीं पाते। किसी चीज को देखा डर लग गया तो हम ये नहीं जान पाते कि अंतरंग में भय कर्म का उदय हुआ है। हम सामने वाले निमित्त को ही पकड़ करके बैठ जाते हैं। तो भय के लिए कहा कि भय एक भावना है जो कुछ जीवों में होने वाले खतरे को बताता है या खतरे से पैदा होता है। कोई डेंजरस चीज देख ली एकदम डर गया। ये शरीर के अंगों के कार्यों और उसके चयापचय के बदलाव का कारण भी बन सकता है कि जो व्यक्ति एकदम सामान्य बैठा है जरा सी देर में भयाक्रांत हो जाता है तो उसके जीवन के अंदर, उसके व्यवहार के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन भी आ जाता है। ये जो परिवर्तन है, जो बदलाव का, शरीर में बदलाव का कारण है, अंततः वह व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है जो कभी अस्वस्थता का रूप धारण कर लेता है। डर करके लोग अस्वस्थ हो जाते हैं, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है, एकदम पता ही नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या, इसे बीमारी क्यों आई, और पता चलता है कि वो तो कुछ देख करके डर गया था या सपने में कुछ आ गया था तो उससे उसके अंदर डर ऐसा समा गया था, भयाक्रांत हो गया था, जिससे उसका इलाज करना भी दुष्कर हो जाता है। और या तो बीमारी का रूप धारण कर लेता है जैसे, या फिर भागने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है, या उसे बहुत ज्यादा कभी कभी देखें आप कपकपी लगने आने लग जाती, डरने लग जाता है, ठंड लगने लग जाती उसे, या फिर खतरे से इधर उधर भाग करके छिपने लग जाता है। ऐसी स्थितियां भयाक्रांत प्राणी के साथ में हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को माताएं डराती हैं तो दूध नहीं पिएगा, अभी बिल्ली को पिला देंगे, ऐसे बच्चों को डराते हैं ना, अभी बिल्ली दूध पी जाएगी, उसके बोतल नहीं अगर मुंह में लगाता, दूध पीने का उपक्रम नहीं करता है, तो ऐसे ऐसे माताएं डरा देती हैं। तो ऐसे कभी बच्चों को डराना नहीं चाहिए। और हमने देखा बचपन में घरों के बाहर भी कोई मदारी लोग भालू लेके आते थे और भालू पर बच्चों को बिठाया जाता था, तो बाद में पता चला कि जिन बच्चों के अंदर भय बहुत होता है तो उनका, उनको भालू पर बिठा करके उनके भय को निकाला जाता है, उन्हें वीर बहादुर बनने के लिए भय रहित किया जाता है। तो डराने का प्रयास नहीं करना चाहिए खिलाने पिलाने में, कभी बच्चों को भयानक चीजों की धमकी दे करके उन्हें डराना नहीं चाहिए, वरना वो भयाक्रांत शुरू से ही ऐसे बन जाते हैं कमजोर दिल के, इससे क्योंकि उनके मस्तिष्क पर जोर पड़ता है और उनके मस्तिष्क में भय बैठ जाता है, तो उनके नाम से ही डर जाते हैं। जैसे बच्चे को अभी बिल्ली बुला देंगे, बस बच्चा डर जाता है। अब आप देखो एक इंद्रिय जीव तक के अंदर भय संज्ञा कैसे है। एक छुई मुई का पेड़ होता है जो जमीन पर ही फैली रहती है, छुई मुई की बेल जैसी, तो उसे कहते हैं लाजवंती। उसके पास में ही आप अगर जाओगे और जरा सा उसे भनक भी पड़ जाती है तो छुई मुई का पेड़ सिकुड़ जाता है। देखा है ना आपने, छुई मुई का पेड़ सिकुड़ जाए, उसके पास में उंगली ले जाओ तो वो सिकुड़ जाती है। तो कि कोई जल्दी से डरने लगता है कि छुई मुई हो, या बहुत कमजोर होता है तो कहते हैं बिल्कुल छुई मुई हो गए। माने छुई मुई नाम के पेड़ में जो एक इंद्री है, ना उसके अंदर मन है, ना वचन है, ना कोई उससे बोल रहा है, लेकिन प्राणी के स्पर्श मात्र से या दूर से ही उनके स्पर्श को पहचान लेने से वो डर जाते हैं। तो छुई मुई पेड़ के अंदर आप बहुत ज्यादा भय को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक इंद्रिय जीव के अंदर भी भय संज्ञा किस रूप में रहती। अब क्या है कि तो भय संज्ञा हो गई, यानी भय को मन में समा लेने से, भयाक्रांत हो जाने से तमाम बीमारियां भी आ जाती हैं, और इस भय संज्ञा को जीवन के प्रत्येक क्षण में अनुभव किया जा सकता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने एक बात बताई कि भय वैसे तो समस्त मनुष्यों में पाई जाने वाली कुछ सहज भावनाओं में से एक है। यानी जैसे कुछ सहज भावनाएं होती हैं, क्रोध आना, चिंता होना, खुश हो जाना, घबराहट हो जाना, या उदासी हो जाना, या चीजों को फेंकने लग जाना, ऐसी कुछ प्रवृत्तियां मनुष्य में होती हैं, उन्हीं में से एक भय नाम की भावना को भी आपको समझना है। और भय और चिंता एक दूसरे से थोड़ा सा संबंधित हैं। चिंता अक्सर जब खतरे के रूप में बेकाबू हो जाती है तब व्यक्ति असामान्य हो जाता है। अब उसके लिए हमारे मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया कि हमारे दिमाग के अंदर एक अमिगडाला नाम की जगह होती, एक स्थान होता है, इसको बताया कि बादाम के आकार का प्रमस्तिष्क वो खंड होता है, बादाम के आकार का, और इसे कहते हैं अमिगडाला। अमिगडाला नाम की जगह है जो भय से जुड़ी जगह, यानी कि वहां पर कुछ ऐसा बदलाव होता है। ये जो मनोविज्ञान है, यानी कि वैज्ञानिक लोग जब शोध करते हैं या जब डॉक्टर बनने लग जाते हैं तो मनुष्य के शरीर पर तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो उनमें से पाया गया कि अमिगडाला नाम की जो जगह है वह हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे स्थित होता है। पिट्यूटरी क्या होता है, यहाँ पर माथे के पास में दोनों आंखों के बीच में लगभग पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो उसके पीछे कि इस ग्रंथि के पीछे अमिगडाला नाम का स्थान है जो हार्मोन में स्राव को उत्पन्न करती है। यानी जैसे भय लगा तो अमिगडाला ने क्या किया कि स्राव उत्पन्न किया और उससे आक्रामकता का रूप धारण कर लेता है व्यक्ति। जब कहने लग जाते हैं साइकिक हो गया या डिप्रेशन में आ गया तो वह भय को प्रभावित करता है। आप देखो कभी भी कि जो थोड़ा सा डिप्रेस लोग होते हैं बड़ी जल्दी डर जाते हैं, अगर कोई उनको कुछ भी फटकारता है, गुस्सा करता है तो डर भी जल्दी जाते हैं। तो इसमें इस पर वैज्ञानिकों का ये कहना रहता है कि वो पिट्यूटरी ग्रंथि के पीछे जो अमिगडाला स्थान है उसने स्राव को उत्पन्न किया और उस स्राव के कारण पूरा मस्तिष्क उसका डिस्टर्ब हो जाता है और उसके कारण वो भयाक्रांत हो जाता है। एक बार जब भय और आक्रामकता की उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है तो अमिगडाला हार्मोन की रिहाई करने लगता है, माने कि यानी समझो कि उसने ज्यादा ज्यादा जितना स्राव हुआ उतना ही अधिक व्यक्ति का माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है और हर वह व्यक्ति जो क्या करता है फिर भागने लगता है या उदास हो जाएगा एकदम। कभी कभी आपने भाई डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो ग्रंथियां हैं, तो उनके अंदर ही जब एबनॉर्मलिटी आती है तब वो अपना कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं कर पाते, उसी के कारण व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। अब क्या वैद्य ग्रंथ मानते हैं कि वात पित्त कफ ये तीन ही चीजें शरीर के अंदर हैं और जब वायु रोग बढ़ जाता है तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। तो भय संज्ञा को मैं आपको धार्मिक सैद्धांतिक दृष्टि से बता रही हूं, लेकिन अपने शरीर विज्ञान के अनुसार भी आपको जानना है कि हम अपने मन को किस तरह से एकदम सौम्य शांत सामान्य बनाए रखें। इसके लिए आपको दिव्य ध्वनि के स्वरूप ओंकार का उच्चारण करते रहना है, क्योंकि यह मस्तिष्क आपका गोदाम है और इस मस्तिष्क के द्वारा ही सारे शरीर के अंदर जब कोशिकाएं चलती हैं तो उनमें जो रक्त का संचार होता है तो उसकी उन रक्त का संचार यदि कहीं भी रुक गया, प्रॉपरली वो रक्त का संचार नहीं हुआ तो वहीं पर कुछ ना कुछ विसंगति आ जाती है। इसलिए अपने मस्तिष्क को सामान्य सौम्य बनाने के लिए, धार्मिकता से परिपूर्ण पॉजिटिव बनाने के लिए हमें ओंकार की ध्वनि और भगवान की भक्ति में एकाग्रता का स्वरूप धारण करना है। ये मैंने आपको भय संज्ञा के बारे में सैद्धांतिक और वैज्ञानिक पक्ष को लेकर के थोड़ा सा बताया है कि प्रारंभ से ही बच्चों के अंदर भी आपको भय नहीं भरना है, आपको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाना है। पहले कहते हैं कि जब माताएं बच्चों को दूध पिलाती थी, भक्तामर पढ़ती रहती थी, तत्वार सूत्र पढ़ती थी, भगवान के स्तोत्र को पढ़ती थी, तो उससे बच्चे के अंदर हमेशा पॉजिटिवनेस अच्छी सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती थी। आज आप जैसे ही बच्चा जरा भी समझदार होता है उसके सामने मोबाइल लाते हैं, यानी रोते बच्चे को यदि चुप करना है तो उसे मोबाइल का सहारा देना पड़ता है और वो गेम देख करके और चुप हो जाता है तो बच्चे के अंदर असामान्यता आएगी। कभी आंखें कमजोर हो जाती हैं, मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आप समस्या लेकर साधु के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए अपने को अपनी पीढ़ी को सामान्य बनाने के लिए, भय से बचाने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए उन्हें प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति और गुरुओं के सत्संग का आचरण उनका जरूर सत्संग करा करके और उन्हें भय से बचाना चाहिए। ये बड़ा अच्छा प्रकरण मुझे लगा कि संज्ञाएं यद्यपि चार हैं लेकिन अगर हम एक एक संज्ञा की वैज्ञानिकता को, उसकी विशेषताओं को और उसकी महानता को कितना अर्थ ये छिपाए बैठी हैं और हम सब के पास ये संज्ञाएं हैं और कार्य प्रतिक्षण करती हैं, तो हम इन संज्ञाओं में ही जी करके अपनी संज्ञाओं को कैसे शुभ बना करके हमेशा पुण्योपार्जन करें। इसलिए इन संज्ञाओं के बारे में आपको एक एक के बारे में मैं एक एक दिन ही बताऊंगी और जरूरत पड़ेगी तो एक को दूसरे दिन भी मैं बताने की कोशिश करूंगी ताकि आपको इसके पढ़ने से यदि कुछ भी लाभ हो सका तो समझो गोमट सार जीवकांड पढ़ना आपका सार्थक हो गया। केवल पढ़ना और परीक्षा देना ही लक्ष्य नहीं है, हमने तो ये सोचा कि कितना आपने पुरुषार्थ किया, 15 लोगों के 100 में 100 नंबर आए, 3 लोगों के लकी ड्रा निकाले गए, तो हमारी पूज्य बड़ी माता जी ने कहा कि नहीं सबको पुरस्कार दो, इतना ऊंचा विषय पढ़ा है। तो हमने सोचा है कि उन 12 के 12 लोगों को भी इस महीने का सम्यक ज्ञान कि मासिक पत्रिका जो जम्बूदी भस्नापुर से निकलती है, आप पूरा अपना पोस्टल एड्रेस भेजिएगा 12 के 12 लोग और आपको इस माह की सम्यक ज्ञान पत्रिका भेजी जाएगी, आपको पढ़ने में बहुत अच्छी लगेगी और उसके बाद आप और भी पत्रिकाओं को मंगाना। ऐसे 95 नंबर भी जिनके हैं, यानी केवल एक क्वेश्चन उनका गलत हुआ कोई बात नहीं, आगे आपको पुरुषार्थ करना है, उन 95 नंबर वालों के लिए भी मेरी प्रेरणा है, आप व्हाट्सएप नंबर पर अपने फुल एड्रेस पोस्टल एड्रेस भेजिए, आपको भी इस माह का सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका जो जनवरी 2024 की है वो आपके पते पर भेजी जाएगी, आप स्वयं पढ़ेंगे, आपके घर के सभी लोग, बड़ी प्रेरणास्पद पत्रिका है, 50 साल से लगातार आप सबके लिए स्वाध्याय के लिए वो जम्बूदीप हसनापुर से निकलती है। तो 95 नंबर पाने वाले भी और 100 नंबर पाने वाले भी जिनका नाम लकी ड्रा में नहीं आया है, सब लोग अपना पोस्टल एड्रेस भेजें और सबको ये निःशुल्क पत्रिका भेजी जाएगी, यही आपका पुरस्कार है। तो ये आपका गोमठ सार जीव कांड का स्वाध्याय हुआ है। अब आप आएंगे संस्कृत व्याकरण में।